परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
दुनिया में एक शोर मचा है, नजात देने वो आया, क्या नाम उसका तुमने सुना है, नजात देने वो
सफर मेरा यीशु हुआ है, अब तुझसे मेरी इल्तिजा है। हम सफर मेरा यीशु हुआ है, अब तुझसे मेरी इल्तिजा है।
तेरे संग गुजरे जीवन ये सारा, दुनिया मोहब्बत तो देखो जो फलक से दुनिया में आया, वो मसीहा मेरा खुदाया। दुनिया में एक शोर मचा है, नजात देने वो आया, क्या नाम उसका तुमने देने वो आया। दुनिया में
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और इसके साथ उन सभी परिवार वालों को जो आज वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन में हम निश्चय ही परमेश्वर के वचन के उन गुण बातों को सीखने पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि नई वाचा पुरानी वाचा से अधिक उत्तम है और हमारा महान महायाजक स्वर्ग में हमारी मध्यस्थता करता है तथा इस नई वाचा को निभाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जिसे आपने प्रभु ये जीवन दिया है ताकि हम सब मिलकर फिर से एक बार आपके वचन का अध्ययन कर सकें। जब हम अलग अलग स्थानों में बैठकर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सीखने का प्रयत्न करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, प्रत्येक को एकाग्रता का मन दें ताकि प्रभु आपका वचन हर एक के जीवन में होकर उनके हृदय तक पहुंचने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से, छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें। अपने वचन के द्वारा आप मुझसे भी बातचीत करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुएं और चंगाई दें, आज के वचन के द्वारा सामर्थ दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री उसके 9 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 9 में हम देखेंगे कि नया पवित्र स्थान पुराने पवित्र स्थान से उत्तम है और बलिदान भी अधिक उत्तम है। नया पवित्र स्थान पुराने से उत्तम है। मेरे प्रियो, हमारा विषय है प्रभु यीशु मेलकिसेदेक की रीति पर हमारा महायाजक है। हमारे सामने यहाँ दो सेवाएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। लेवियों की सेवा, हारून की सेवा सांसारिक मिलाप वाले तंबू की थी। यह पवित्र स्थान स्वर्ग के पवित्र स्थान का एक नमूना था। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु इस स्वर्गिक मंदिर में सेवा कर रहा है। स्वर्ग का यह पवित्र स्थान अधिक उत्तम आराधना का प्रावधान करता है। अधिकांश जन व्यवस्था को 10 आज्ञाओं के दृष्टिकोण से देखते हैं, परंतु इब्रानियों की पत्री का लेखक आराधना के स्थान और याजकीय सेवा के परिप्रेक्ष्य में देखता है। यह दृष्टिकोण पाप के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है और कहता है कि व्यवस्था ने कभी पाप का समाधान नहीं किया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 4 पद में वह कहता है, यह अनहोना है कि बैलों का और बकरों का लहू पापों को दूर करे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 1 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। मेरे मित्रों, यहाँ पर सेवा का मूल अर्थ है आराधना। ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, कहने का अर्थ है कि सांसारिक सामग्री से निर्मित पवित्र स्थान या जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यही थी तथा लोग उसमें विधिवत रीतियां निभाते थे। जगत का अभिप्राय यही है। लेखक अब इस पवित्र स्थान की तुलना स्वर्गिक पवित्र स्थान से करेगा। हम इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। लिखा है क्योंकि एक तंबू बनाया गया। यहां एक बात पर ध्यान दीजिए कि लेखक हेरोदेस द्वारा बनाए गए मंदिर का संदर्भ नहीं दे रहा है, जबकि इस पत्री के लिखे जाने के समय वह मंदिर खड़ा था। इसकी अपेक्षा लेखक उस तंबू का संदर्भ देता है जो परमेश्वर ने मूसा को सुझाया था। वह एक साधारण सा नक्शा था, मानचित्र था। वह तंबू लौकिक वस्तुओं से ही निर्मित था, यद्यपि वह स्वर्गिक मंदिर का प्रतिरूप था। हम पढ़ते हैं वह पवित्र स्थान कहलाता है। तंबू एक प्रकार से सोने का बक्सा था। उसकी लंबाई 45 फुट और चौड़ाई 15 फुट तथा ऊंचाई 15 फुट थी। उसके दो भाग थे, पवित्र स्थान जिसमें भेंट की रोटियां, मेज और दीवट थे। उसके पीछे सोने की वेदी थी और धूप जलाने की वेदी भी थी, जहां बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। यह वेदी प्रार्थनाओं का प्रतीक थी। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 3-5 पद में हम आगे पढ़ते हैं, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। मेरे मित्रों, परम पवित्र स्थान अर्थात तंबू का वह भाग जो पर्दे के पीछे था, यहाँ केवल महायाजक ही जा सकता था। वहाँ लकड़ी से बना वाचा का संदूक था जिस पर सोना चढ़ाया गया था और इस संदूक के ऊपर दया का आसन था जो करूबों द्वारा सुसज्जित था। ये करूब अति सुंदर स्वर्ण आकृति के थे और संदूक से नीचे देखते थे। इसी स्थान पर लहू चढ़ाया जाता था क्योंकि लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं सोने की धूप दानी। देखिए यहाँ कुछ अंतर है। सोने की यह धूप दानी पवित्र स्थान की अपेक्षा परम पवित्र स्थान में है। इसे परम पवित्र स्थान में क्यों रखा गया? पर्दा मिस्र के सर्वोत्तम मलमल का बना था और वह प्रभु यीशु की मानवता का प्रतीक था। जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी तब यह पर्दा बीचों बीच में से फट गया था, जिसका अर्थ था कि परमेश्वर के निकट आने का मार्ग खुल गया। यह मार्ग प्रभु यीशु ने तैयार किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में वह कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रियो, अब हम प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अब सोने की वेदी का क्या हुआ? वह परम पवित्र स्थान में आ गई है। प्रायश्चित के दिन हारून सोने का धूप दान लेकर परम पवित्र स्थान में आता था। इस धूपदान में जलता हुआ कोयला और धूप होती थी। वह धूप की वेदी को एक प्रकार से परम पवित्र स्थान में लाता था। वह उस वेदी पर से सुखदायी सुगंध को धूपदान में लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, परंतु उसे फिर से बाहर ले आता था। इस प्रकार वह वर्ष प्रतिवर्ष यही करता था। परंतु हमारे पास एक महान महायाजक है जो उस सोने की वेदी पर हमारा मध्यस्थ है और हमारे लिए विनती करता है, और उसकी विनती अवश्य सुनी जाती है। इस प्रकार वह सोने की वेदी भीतर भी है और बाहर भी है, क्योंकि हम प्रार्थना के माध्यम से उसके पास आते हैं। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पौलुस के कहने का अभिप्राय यही है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। मेरे मित्रों, लेखक वाचा के संदूक में रखी वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। हम आगे पढ़ते हैं, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, यह प्रभु यीशु की वर्तमान सेवा का प्रतीक है। वह अपनों को भोजन देता है, अपने वचन का पोषण प्रदान करता है, वह जीवन की रोटी है। आपको परमेश्वर की बेकरी बाइबल में जीवन की रोटी मिलेगी, आपको वहीं जाना होगा। आगे लिखा है, हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, यह प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है, क्योंकि वह लाठी सूख चुकी थी परंतु फिर भी उसमें पत्ते और फूल उग आए थे। तब हम पढ़ते हैं, और वाचा की पटियां, यह उस सत्य का प्रतीक है कि प्रभु यीशु ने व्यवस्था पूरी की। तब लिखा है, इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं, क्योंकि लेखक अभी प्रभु यीशु के याजक होने और आराधना की चर्चा कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। लिखा है, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। यद्यपि याजक उस तंबू में नियमित रूप से जाते थे, परंतु वे कार्य को पूरा नहीं कर पाए। मेरे विचार में दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष तंबू में एक ही कार्य करना उनके लिए अत्यधिक उबाऊ कार्य हो गया था। इसका अर्थ यह था कि उनका कार्य अपूर्ण था। परंतु हम देखेंगे कि प्रभु यीशु एक ही बार पवित्र स्थान में गया, क्योंकि एक बार वहां जाना तो उसके लिए आवश्यक था। हम पढ़ते हैं, सेवा के कार्य संपन्न करते थे, अर्थात परमेश्वर की आराधना करते थे। यह परम लक्ष्य था कि परमेश्वर की प्रजा उसकी उपासना करे। यह सच्ची उपासना के विषय कहा गया है, रविवारीय आराधना नहीं जिसमें एक आराधना विधि का पालन किया जाता है, परंतु सच्ची उपासना। आराधना में हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में आते हैं कि उसे सराहें। मेरे मित्रों, आराधना का अर्थ है कि किसी को उसकी योग्यता के अनुरूप कुछ अर्पित करना। प्रभु यीशु हमारे द्वारा उसकी स्तुति और सराहने के योग्य है, यह उपासना है और इससे आराधना उत्पन्न होती है। जंगल में परीक्षा के समय प्रभु यीशु ने शैतान से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 10 पद में, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यदि आराधक सच्ची आराधना करता है तो आपको उसे प्रेरित एवं उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रायः परमेश्वर का दास उपासकों को उत्तेजित करने में बहुत समय गंवाते हैं। उन्हें दान देने के लिए बाध्य करना, शिक्षा देना, गाने के लिए प्रोत्साहित करना आदि। परंतु सच्ची उपासना से स्वतः ही आराधना प्रवाहित होती है। ऐसी उपासना केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। मेरे मित्रों, तंबू की सेवाओं के माध्यम से लोग वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते थे। केवल महायाजक ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। अब वह प्रायश्चित के दिन के विषय चर्चा करेगा। यह इसराइल राष्ट्र के जीवन का एक महान दिन था। इस दिन राष्ट्र की ओर से महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता था और उसके इस कार्य के द्वारा इसराइल एक और वर्ष के लिए परमेश्वर द्वारा ग्रहण किया जाता था। मेरे मित्रों, हमारा महायाजक परम पवित्र स्थान में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर चुका है और वही है, वह बाहर नहीं आया है। जब तक हम संसार में हैं, वह वहीं रहेगा। जब वह बाहर आएगा तब वह अपने लोगों के लिए आएगा, क्योंकि हम उसकी मसीह की देह हैं। इसका उद्देश्य है कि हमारे मन में प्रभु यीशु की उपस्थिति को यथार्थ रूप प्रदान करें। मेरे प्रियो, क्या आपने उसके साथ आज का दिन आरंभ किया है? यह एक व्यस्त संसार है जिसके पास प्रभु यीशु के लिए समय नहीं है। क्या इस दिन की व्यस्तता में वह आपके साथ है? क्या आपने उसकी उपासना की है? उसकी उपासना में हमें आराधना में उपस्थित होकर स्तुति गान नहीं गाना है। इस पत्री का लेखक हमें इसके लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए। यह हमारे विकास के लिए आवश्यक है। परंतु हम कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं, खेत में, मार्ग में, कार्यालय में, कक्षा में, कहीं भी। मेरे मित्रों, आप कहीं भी उसकी उपासना कर सकते हैं। हमें उसके पवित्र नाम की स्तुति और सराहना में अपने मन लगा देने हैं। हमारा महायाजक हमारे लिए आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में है, प्रतिदिन वहां रहता है। अतः आप देख सकते हैं कि मंदिर के याजक की तुलना में वह कैसा महान है, क्योंकि मंदिर का याजक तो वर्ष में एक बार ही परम पवित्र स्थान में जाता था। वह वहीं उपस्थित नहीं रहता था, और सच तो यह है कि वह बाहर आने में शीघ्रता करता था। प्रथाओं के अनुसार उसे रस्सी से बांधा जाता था कि यदि वह किसी चूक के कारण मार डाला जाए तो उसे बाहर खींचा जाए और फिर एक नया महायाजक ठहराया जाए। ओह, इसका आश्चर्य और महिमा! हमारा महायाजक हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में गया और वहीं रहता है। आज भी वह वहां है। किसी ने इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसके 24 पद का अनुवाद इस प्रकार से किया है, प्रभु यीशु हाथों द्वारा बनाए गए पवित्र स्थान में नहीं गया जो वास्तविक का प्रतिरूप था, परंतु स्वर्ग में ही गया कि हमारे लिए परमेश्वर के चेहरे के सम्मुख उपस्थित हो। मूसा ने परमेश्वर का चेहरा देखना चाहा, परंतु उससे कहा गया कि परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता है। परंतु हमारा महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर गया है। मेरे मित्रों, हम आराधना विधियों द्वारा उसकी उपासना नहीं कर सकते या एक सुंदर सी वेदी बनाकर नहीं कर सकते हैं। एक बार मैं अपने एक मित्र प्रभु के दास की आराधना में गया था। मैंने उससे पूछा कि उसने प्रभु भोज के मेज पर क्रूस क्यों रखा है। उसने कहा, वही नहीं, आपने मोमबत्तियां नहीं देखी? उसकी मेज के कोनों पर मोमबत्तियां भी थी, जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसने कहा कि वे कलीसिया की आराधना में सहायक हैं। सामरी स्त्री ने कुएं पर यीशु से पूछा था कि आराधना कहाँ करना चाहिए। योहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ यीशु का उत्तर है, वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। एक और पादरी साहब हैं जिसने अपने आराधनालय में 7 मोमबत्तियों का दीप दान रखता है। उसका मानना है कि वह यहूदियों के प्रति आभारी बनाता है। आराधनालयों में यह सब रखने का अर्थ है, हम सच्ची आराधना नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, काश हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी दुखदायी सुगंध को सूंघ पाते। हमारी नाक ने नहीं, हमारे प्राण और मन मस्तिष्क द्वारा, कि हम उसके वचन की ज्योति पर चलें और हमारे जीवन में दैनिक सत्यता प्रकट हो। हमें दूध की बोतल छोड़कर वचन के ठोस आहार को खाना है। हमें स्वर्ग में सेवारत हमारे महायाजक की उपस्थिति में आना है। हमें आज उसकी उपासना करना है। मेरे प्रियो, आज निश्चय ही हम सबको जांचने और परखने की आवश्यकता है कि आज हम किसकी उपासना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या सचमुच हम उस महान महायाजक की ओर आ रहे हैं? क्या हम उसकी ओर निहार रहे हैं? क्या हम उसकी उपासना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि आप किस कलीसिया से हैं, मैं यह भी नहीं जानता कि आप किस कलीसिया में कब आराधना करते हैं, परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस सच्चे परमेश्वर को, उस सच्चे महायाजक को अपने जीवन में आने दें और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, ताकि उसके द्वारा आप अपने जीवन में उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर सकें। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। आज आपके लिए अवसर है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही उस महान तंबू के बारे में जान लिया है जहां पर हमारा महायाजक है, जो हमारे लिए मध्यस्थता का काम करता है, और वही मुझे और आपको भी उस स्थान पर पहुंचा सकता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।